سورة فرقان آية نمبر 63. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. رحمان کے سچے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر مصلحت کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے، اور جب اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں، اور جو یہ دعا کرتے ہیں کیا، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقر و مقاما. اے ہمارے رب، ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے. دیکھیے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تعارف شروع کروایا. پہلی تو بات ہے، یہاں لفظ عباد آیا ہے. عربی زبان میں عبد غلام کو کہتے ہیں. ہر بندہ کسی نہ کسی کا عبد ہے. کوئی اللہ کا عبد ہے، اِیّاک نعبد کہتا ہے، کوئی معاشرے کا عبد ہے، کوئی اپنی ذات کا عبد ہے، کوئی ڈالر کا عبد ہے، یعنی کوئی نہ کوئی، ہر ایک کسی نہ کسی چیز کی غلامی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی غلامی کی. اب یہاں عبداللہ نہیں کہا، عبد الرحمن، کیونکہ عبداللہ کی طرح عبد الرحمن نام بھی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. دوسری بات ہے کہ لفظ عبد کی جمع عربی زبان میں ایک تو عباد آتی ہے اور ایک عبید آتی ہے، دونوں ہی قرآن میں موجود ہیں. لیکن یہاں اتنا خوبصورت نقطہ آپ کے سامنے ہے، اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عبید کی جگہ عباد استعمال کیا. جو گرامر اسٹوڈنٹس ہیں یا جن کی گرامر بہت اچھی ہے، وہ تو 100% جان گئے ہوں گے. تھوڑا سا آپ کو شوق دلانے کی خاطر بتاؤں کہ قرآن پڑھنے کے دوران ہم یہ بیچ میں باریک چھوٹی چھوٹی باتیں تفسیر میں بھی بتاتے ہیں، ان ڈیپتھ میں بھی، اور سبیل الجنہ کورس کی تفسیر کے دوران بھی اس پہ بات ہوتی ہے، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. واللہ ما لہذا کلام البشر. تو عبید کہتے ہیں اس غلام کو جو مارے باندھے غلام ہے، بائی ہک اور بائی کروک، جیسے سورج چاند ستارے. دے ڈونٹ ہیو اینی چوائس، دے ڈونٹ ہیو اینی ول پاور، ان کو تو کرنی ہے غلامی. عباد کہتے ہیں اس غلام کو جو اپنی خوشی سے بندہ بن جائے اللہ کا. سمجھ آئی؟ اگر یہ عبید ہوتا تو ہم سارے مجبور تھے، یہاں اپنی چوائس سے اللہ کو مانتے ہیں، اور اللہ ہمیں واقعی عباد الرحمن بنا دے. اگلی خوبی اینڈ پہ لسٹ ان کی اکٹھی کریں گے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. ذرا سا خواتین اس پہ بھی غور فرمائیں کہ خرچ کرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے اللہ کے بندوں کی، اور جو خرچ کرتے وقت بھی اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل یعنی بیلنس طریقے پر خرچ کرتے ہیں. یعنی اسلام افراط اور تفریط سے بچ کر رہنا سکھاتا ہے. تدبر کرتے ہیں آیت 43 سے آنورڈ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے دوسروں کو ڈرانے والی باتوں سے پہلے خوشخبری سے دعوت کا آغاز کیجیے. یہ ایک اصول ہے بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، کہ پہلے اچھی بات کیجیے، پھر ذرا خوف والی بات کیجیے. اپنی ذات اور گھر والوں پر خرچ میانہ روی کے ساتھ کرنا، یعنی اسراف نہیں کرنا. نماز تہجد کی پابندی کی کوشش کریں، اور چاہے دو نفل ہی کیوں نہ ہوں. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں باڈی لینگویج بتائی گئی عباد الرحمن کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا. پھر جہاں کوئی غلط بات ہوتی ہے تو عزت سے گزر جاتے ہیں، یعنی باتوں کو سلجھانے والے ہوتے ہیں، الجھانے والے نہیں. اور اسی طرح سے ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے. رہنمائی کے نقطے، اپنی زندگی فطرت کے مطابق گزریے. رات کو آرام اور دن کو کام کیجیے. اللہ کے علاوہ کسی پر توکل نہ کریں. جہاں بھی رہیے اللہ سے ڈر کر رہیے، کیونکہ وہ آپ کے تمام گناہوں کو جاننے والا ہے. یہ تو اس کا ظرف ہے نا کہ اس نے لوگوں کو ہمارے گناہ نہیں بتائے. غور و فکر، جانور کافر کے مقابلے میں زیادہ راہ راست پر ہیں، کیونکہ وہ اپنی ہلاکت کے راستے کو پہچان کر اس سے بچ جاتے ہیں، اور کافر ہلاکت کے گھڑے جہنم سے نہیں بچتا. علماء کا جہاد سب سے بڑا ہے، کیونکہ وہ قرآن کے ذریعے جہاد کرتے ہیں، اور دین کے دشمنوں پر دلیلیں پیش کرتے ہیں، دین کا دفاع کرتے ہیں، اور انجان لوگوں کو دین دے کر ان کو اسلام کے करीब करते हैं। इबादुर रहमान से कोई नापसंदीदा बात करे तो वो इनको भली और अच्छी बात से जवाब देते हैं। अल्लाह के बंदे ज़मीन पर आजजी और इनकसारी के साथ चलते हैं और चलने में मियाना रवि इख्तियार करते हैं। तो ज़रा अपने चाल चलन को भी देखिएगा कि क्या तरीका अल्लाह ने सिखा दिया। आगे 68 से ऑनवर्ड, वल्लज़ीन ला यदून मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते और किसी ऐसे शख्स को जिसे कत्ल करना अल्लाह ने मना कर दिया हो वो सिवाय हक के कत्ल नहीं करते, ना वो जिना के मुर्तकिब होते हैं, और जो कोई ये काम करेगा वो अपने ऊपर सख्त बवाल लाएगा, इसे कयामत के दिन दोहरा अजाब दिया जाएगा, और वो जिल्लत और ख्वारी के साथ हमेशा इसी में रहेगा। इल्ला मन ताबा वामन वामिला सालेहा, सिवाय इन लोगों के जो तौबा करें और ईमान लाएं और नेक काम करें, ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देता है। अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबानी करने वाला है, और जो कोई तौबा करे और नेक अमल करे तो वो हकीकतन अल्लाह ताला की तरफ सच्चा रजू करता है। अल्लाह में ऐसे ही बना दे। वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूर, और जो लोग झूठी गवाही नहीं देते, और जब किसी लफ्ज़ चीज़ पर इनका गुजर होता है तो शराफत से गुजर जाते हैं, और जब इनके रब के कलाम की आयतें सुनाई जाती हैं तो अंधे बहरे होकर इन पर नहीं गिरते। वल्लज़ीना यकूलूना रब्बना हबलना मिन अज़्वाजिना वज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वज़अलना लिलमुत्तकीना इमामा, और ये दुआ करते हैं कि हमारे परवरदिगार तुम्हारी बीवियों और औलाद से हमारी आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का पेशवा बना। ये कौन सी दुआ है? कार्य रसालत हो नहीं सकता जब तक बीवी बच्चों को साथ लेकर ना किया जाए। जहां फैमिलीज खानदान दीन से जुड़ते हैं ना, वहीं अल्लाह उनसे काम लेता है। आप इंडिविजुअली अपने उन पे दीन सीख सकते हैं, कुरान से फायदा ले सकते हैं एज अ स्टूडेंट, लेकिन एज अ दीन के दाई, दीन के अंसार यानी अंसारुल्लाह एडमिन जिम्मेदार बनने के लिए आपको अपने फैमिलीज को साथ बोर्ड में लाना पड़ेगा। थोड़ी देर आप अकेले काम कर सकते हैं, और अगर आपने जिंदगी भर के लिए ये काम लेना है क्योंकि रिसालत एक मिशन है, तो पहले अपने घर वालों को भी करीब कीजिए। और घर वाले करीब किससे होते हैं? प्यार से, मोहब्बत से, कुरान से। कुरान सिखाई जा है तो भी जिहादन कबीरा, बैठिए काउंसलिंग कीजिए शोहर बीवी की, बीवी शोहर की, कि भाई आपको कुरान नहीं आता, चलिए मिलके सीखते हैं। बेगम आपको अभी तक तर्जमा नहीं आता, आइए मिलके सीखते हैं, किसी मदरसे में दोनों चले जाएं, क्या बुरी बात है? वो लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाकर रोमांस करें और वहाँ पढ़ने से ज़्यादा और ही कुछ उनके ख्यालात हों, तो आपको तो अल्लाह ने एक जायज़ रिश्ता दिया, शौहर बीवी दोनों स्टूडेंट्स बन जाएं, इससे प्यारा रिश्ता नहीं कोई होता। वो फिर वो कुलीग्स वाली कैफियत भी बनती है और इसी तरह से फ्रेंडशिप बॉन्ड भी बनता है। दूसरी बात यह कि इसमें आंखों की ठंडक की बात है। आंख कब ठंडी होती है? दुनिया में आप देखिए, पानी पड़ जाए तो चीज़ ठंडी हो जाती है ना। उलमा ने इसकी बड़ी प्यारी तौजीह दी। वो कहते हैं कि अल्लाह हम अपने बीवियों और बच्चों, खवातीन क्या कहेंगे, हम अपने शोहरों और बच्चों को भाग भाग के नेकियां करता देखें, और उनको नेकियां करता देकर खुशी से हमारी आंखों में आंसू आए और आंख के आंसू से हमारी आंख ठंडी हो जाए। मुराद है कि हमारे घर वाले नेकियों में हमसे ज्यादा भाग दौड़ करें। आमीन कह दीजिए, शायद दुआ कबूल हो जाए। आज मिलेगा क्या? ओलाई का युजन अलगरफत बीमा सबर हूँ, यही वो लोग हैं जिन्हें इनके सब्र के बदले जन्नत के बुलंदो बाला खाने दिए जाएंगे, यानी बड़े बड़े हाई राइट्स और इसी तरह टॉप क्लास बिल्डिंग्स, जहाँ इन्हें दुआ सलाम पहुँचाया जाएगा। इसमें ये हमेशा रहेंगे, वो बहुत ही अच्छी जगह और उम्दा मुकाम है। कह दीजिए अगर तुम्हारी दुआ यानी इल्तजा या पुकारना ना होता तो मेरा रब तुम्हारी मुतलक परवाह ना करता। इससे पता चलता है जो नहीं मांगता अल्लाह उसे बेनियाज है। तुम तो झुटला चुके, अब अन करीब इसकी सजा तुम्हें चिमट जाने वाली होगी। अल्हम्दुलिल्लाह 77 पे रुक पूरा हुआ। तदब्बुर और अमल, दिन भर में 100 बार अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने अपने बारे में यही फरमाया। किसी दिन अल्लाह की खातिर रोज़ा रखें या किसी मोहताज की मदद करें, और उसका अजर सिर्फ अल्लाह ताला से तलब कीजिए। औलाद और अजवाज से आंखों की ठंडक मिलने की दुआ को अपनी आदत बना लीजिए, लेकिन तर्जमे पे गौर करते हुए शऊर के साथ ये दुआ कीजिए। चलिए आज हम अभी इस वक्त दुआ के तौर पे करते हैं। मेरी दुआ मुझे और आपकी दुआ आप सबको लगे और हमारी दुआ एक दूसरे को भी लग जाए। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन व जालना लिल मुत्तकीना इमामा, आमीन। रहनुमाई कुरान से। अल्लाह से दुआ कीजिए कि आपको बुलंद हौसले वाला और मुत्तकियों का पेशवा बना दे। अल्लाह से इस तरह डरना है कि इसका डर शिर्क और कबीरा गुनाहों के दरमियान आड़ बन जाए, यानी इबादुर रहमान कबीरा गुनाहों की तरफ मुंह भी नहीं करते, शिर्क का तो तसव्वुर ही नहीं। अल्लाह अपने तौबा करने वाले बंदे के गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। अल्लाह हमें तौबा की तौफीक दे। गौर व फिक्र, हर किस्म के खुफिया और जाहिरी शिर्क को पहचानना और इससे बचना है। कुरान सुनते वक्त अपने कानों और दिल के साथ मुकम्मल तौर पर मुतवज्जह रहें। एक मोमिन के लिए सबसे ज्यादा सुकून और आंखों की ठंडक इसमें है कि वह अपनी बीवी और औलाद को अल्लाह का फरमा बरदार देखे। इस खूबसूरत से पैगाम पे सूरत पूरी हुई। पूरी सूरत में नबी सल्लम की मुखालफतें और आपको सब्र की दावत दी गई और एंड पे इबादुर रहमान की ये सारी सिफात बता के आपको मुझे एक शेर पढ़ने पे मजबूर कर दिया गया। सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मोहम्मद अरबी ने अपने अखलाक से, अखलाक नबी जिसको अगर आप समझते हैं, उससे दुनिया में इस्लाम फैलाया, दीन दिया, तो आपके मेरे लिए भी यही किरदार अपनाना पड़ेगा। आज किरदार फर्क है, यानी अता हो तुझे जिद्दते किरदार, तो ये आयतें जो हैं आपको मुझे क्या सिखाती हैं कि किरदार को नया कीजिए। और वो इबादुर रहमान की रोशनी में, वो सूरत फुरकान की रोशनी में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में से थोड़ा समझानेंगे कि आप कैसे थे, कैसे आपका किरदार लोगों के लिए खूबसूरत गवाही बना। तो इबादुर रहमान की सिफात में जो सिफत आई है कि वो बॉडी लैंग्वेज का ख्याल रखते हैं। बॉडी लैंग्वेज में एक चीज़ होती है आंखों से इशारे करना, जिसको आप क्या कहते हैं, आंख मारना, कनखियों से देखना, बदनजरी, बदनिगाही। तो आइए जरा देखते हैं टॉपिक क्या है। हम अंबिया आंखों से इशारे नहीं किया करते। अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरह सुलह हदैबिया से पहले इस्लाम कबूल करता है। ये कुरैशी था और हजरत उस्मान बिन अफान का रजाई भाई था। इस्लाम पर सख्ती से कारबंद रहने वाला अब्दुल्ला जल्द ही अल्लाह के रसूल का एतमाद हासिल कर लेता। ये पढ़ना लिखना जानता था, इसलिए अल्लाह के रसूल ने इसे दीगर सहाबा के साथ कातिब वही मुकरर किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि जब आप पर वही का नजूल होता तो फौरन बाद किसी न किसी कातिब वही को तलब फरमाते और जो आयात नाजिल होती इन्हें फौरन इमला करवा देते, यानी डिक्टेट कराते, क्योंकि जुबान नहीं आता था आपको। एक मरतबा सूरत मोमिनून की आयात नाजिल हुई तो इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवा भेजा। उसने दानिस्ता यानी जान के इरादतन पर्पसली गलत आयात लिख दी कि देखते हैं क्या होता है, और मुर्तद होकर मक्का मुकरमा भाग गया। मक्का मुकरमा पहुंचकर इसने अपने पुराने दीन को अपनाने का ऐलान कर दिया और लोगों को बताया कि इसने किस तरह कुरान करीम में तहरीफ करने की कोशिश की है, यानी जानते बूझते खयानत की है। फतेह मक्का मुकरमा के रोज जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में दाखिल हुए तो आपने हुक्म जारी फरमाया कि 8 मर्द और 3 औरतें ऐसी हैं जिनको हर हाल में कत्ल कर दिया जाए। इन 8 मर्दों में एक अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरख भी शामिल था। ऐलान हुआ कि ये लोग अगर गिलाफ काबा के साथ भी चिमटे हुए हों तो भी इनको कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल के हिल, आपके अफो दरगुजर और आला अखलाक को देखिए कि इन बड़े बड़े मुजरमों में से भी बाज लोगों को मुआफ कर दिया गया। इबादुर रहमान कौन होते हैं? माफ कर देते हैं। फतेह मक्का के रोज यही अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरख हजरत उस्मान बिन अफान के पास आता है और इनसे अमान तलब करता है, यानी मेरी इंश्योरेंस करवा दें, यानी मुझे कुछ ना कहा जाए। वो इनके घर में छुप जाता है। जब थोड़ा सा वक्त गुजर जाता है तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु इसे लेकर रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होते हैं और आपसे अफ़ो दरगुजर और मुआफ़ी के तलबगार होते हैं। अल्लाह के रसूल खासी देर तक खामोश रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान तलब की गई है। सोचिए, अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरख का जुर्म कोई मामूली जुर्म नहीं था। कुरान में खयानत तो किसी तौर पे भी गवारा ना हो। इस शख्स ने इस्लाम और वही के पूरे निज़ाम को ढाने की कोशिश की थी और ये शख्स किसी सूरत माफी के काबिल नहीं था, मगर अल्लाह के रसूल के आला अखलाक को देखिए, क्या खासी देर तक खामोश रहे, यानी सोचते रहे या अल्लाह से गाइडलाइन ले रहे थे। फिर इरशाद होता है, नाम, चलो ठीक है, इसे अमान दी जाती है, इसकी माफी कबूल है। जैसे ही आपने इसे माफी दी, इसकी सजाए मौत मंसूख हो चुकी है कि कायद आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के इस बड़े दुश्मन को भी माफ कर दिया है। थोड़ी देर बाद अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सर हजरत उस्मान के साथ अफ्वो दरगुजर समेटते हुए वापस चला जाता है। अल्लाह के रसूल ने अपने इर्द गिर्द सहाबा की तरफ देखा और इनसे इरशाद फरमाया, अम्मा कान फीकुम रजुलुर रशीद, क्या तुम में से कोई ऐसा समझदार आदमी ना था? या कौम इला हाजा हीन रानी कद समत, जिस दौरान मैंने कोई जवाब न दिया था, फयक्तुलुहु, इसी असना में उसे कत्ल कर देता, यानी कत्ल कर देते इसको जब मैंने नहीं बोला। सहाबा किराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आप इशारा फरमा देते, हम इसे कत्ल कर देते। ये है आला अखलाक। आपने जो इरशाद फरमाया, इन नबिया ला यक्तुलु बिल इशारा, यानी ऐसे इशारा, हाथ से होता ना, कत्ल कर दो, कि नबी किसी को इशारे से कत्ल नहीं किया करते। इसी तरह एक रिवायत में आता है, इन्नहु ला यंबगी नबीयन अन तकून लहू खाइनतुल आयुन, आंख का वो इशारा जो खयानत पर मबनी हो, ये मनसबे नबूवत के शायाने शान नहीं। अब ये वाक़या सुनन अबी दाऊद में भी है, सीरत नबुवा में भी, और कई जगह पे मौजूद है बदायर नहाय में। आपको मुझे इससे क्या मिला? अपनी बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल करें। किरदार ऐसा होना चाहिए कि चलने में, फिरने में, बोलने में, उठने में लोग आप इतनी खूबसूरती देखें। यकीन करें, हमें खुद नहीं पता था हम कितनी आंखें खोलते हैं, हम कैसे चप 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 करके खाते हैं, कैसे सारी प्लेट में हमारी चम्मच फिरती है, हम चलते हैं तो हमारे पाँव ऐसे घसीटते हैं, जूतियाँ इधर से उधर होती हैं। तो बंदा मोमिन जब इबादुर रहमान के दर्जे पे है ना, तो उसकी पर्सनैलिटी में कशिश होनी चाहिए, अट्रैक्शन, हाथ हिला रहे हैं, खुजा रहे हैं, बैठे हैं, टांगे इधर है, नाक में उंगलियां डाल रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता। तो बंदा मोमिन अल्लाह को भी प्यारा लगे और बंदों को। इसका ये नहीं मतलब कि वो स्टैचू बनता है, लेकिन नॉर्मल होता है। तो जरा से हम अपने किरदार के साथ साथ अपने एक्शंस को भी देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी सी बात सीखने के बाद आगे चलते हैं सूरह शोरा पे। शोरा शायर की जमा, लंबी सूरतों में आप देखिए 227 आयतें हैं, लेकिन छोटी छोटी हैं। इस सूरत के बिल्कुल एंड में शायरी का जो एक इल्ज़ाम था नबी सल्लम पे, उसका जिक्र करते हुए शायरी का ओवरऑल क्या रोल है आप पढ़ेंगे, और इसमें भी स्टोरीज हैं, बहुत इंजॉय करेंगे आप इस सूरत को, क्योंकि ये कहानियाँ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तौसीम मीम, हरूफ मुकत्तात, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, लाअल्ला का बाख़िउ नफ्सक अल्ला यकूनू मुमिनीन। ज़रा महसूस कीजिएगा, रिसालत एक मिशन है इसको। ये आयतें रोशन किताब की हैं, इनके ईमान न लाने पर शायद आप तो अपनी जान खो देंगे। कभी आप और मैं भी घुले, जले, कुड़े, दुखे कि दुनिया में इतना शिर्क क्यों है, इतना कुफर क्यों है, इतनी बिदअत क्यों है, इतनी कबीरा गुनाहों की बख्तात क्यों है, इतना सूद क्यों है, इतनी बेहयाई, इतनी बेदीनी, इतना इसराफ क्यों है। हम तो उस वक्त कुछ अपनी ही जाती फिक्रों में खोए होते हैं, और अगर हम चाहते तो इन पर आसमान से कोई ऐसी निशानी उतारते जिसके सामने इनकी गर्दनें खम हो जाती, यानी इनके दिल भी मान जाते, इनकी गर्दनें भी मान जाती, और इनके बस रहमान की तरफ से जो भी नई नसीहत आई, ये इसे रूगर्दानी करने वाले बन गए, इन लोगों ने झुटलाया। अब इनके पास जल्दी से इसकी खबरें आ जाएंगी जिसके साथ वो मस्खरापन कर रहे हैं। क्या उन्होंने जमीन पर नजरें नहीं डाली कि हमने इसमें हर तरह के नफीस जोड़े किस कदर उगाए हैं, और बेशक इसमें यकीनन निशानी है, और इनमें से अक्सर लोग मोमिन नहीं, और तेरा रब गालिब मेहरबान है। ये भी आपको जुमला इसमें दिखेगा, वो इन रब्बक लहुवल अजीजुर रहीम। क्या पता चला, पीछे इबादुर्रहमान की बात थी, और इबादुर्रहमान की बातों में ना सिर्फ ये है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, और इसी तरह से उनका किरदार था, दुआएं थी उनकी, और अपने आप को ज़ाया नहीं करते थे, कुव्वत गज़ब, कुव्वत शहवत, कुव्वत जो शर थी उसको काबू में पाते थे, साथ ही साथ तौबा करते थे और अपने बच्चों और अपनी फैमिलीज के लिए दुआएं करते थे और ये कहते थे कि अल्लाह हमारे बच्चों से पहले हमें मान वाला बना दे। अब यह एकदम सूरह शोरा की शुरू हो रही है, लिख ले। शायरी ने बहुत सारे लोगों को हक के पैगाम से रोका, कार्य रिसालत नहीं करने दिया। फिक्शन, आज इसको फिक्शन कह लें, मीडिया का गलत इस्तेमाल कह लीजिए, आर्टिस्ट का अपनी स्किल्स को गलत इस्तेमाल कह लीजिए या बाकी चीज़ें, यहाँ आपको हिस्टोरिकल अंदाज में हज़रत मूसा की कहानी से लेके और अम्बिया की मिलेंगी कि सच्ची कहानी में भी अल्लाह की रहमत से सबक भी होते हैं और इंजॉयमेंट भी होती है। कैसे? वही इसनाद रब्बु का मूसा, आयत नंबर 10। और जब आपके रब ने मूसा अलैहि सलाम को आवाज़ दी कि तू जालिम कौम के पास जा, कौम फिरौन के पास, क्या वो परहेजगारी ना करेंगे? मूसा अलैहि सलाम ने कहा, मेरे परवरदिगार, मुझे खौफ है कि कहीं मुझे झुटला ना दें और मेरा सीना तंग हो रहा है और मेरी जुबान चल भी नहीं रही, बस तो हारून की तरह वही भेज दे और इनका मुझ पर मेरे कसूर का दावा भी है और मुझे डर है कि कहीं वो मुझे मार ना डालें। हजरत मूसा की समल पे नुक्ता लीजिए, रिसालत एक मिशन है ना, कोई काम आपसे खुद अकेले नहीं हो पा रहा तो साथ दूसरों को तलब कीजिए। हर काम अपने सर पे ले लेना और वर्क डेलीगेट ना करना, ड्यूटीज को असाइन ना करना, ये भी कोई मसनून तरीका नहीं है। और इससे ये भी पता चलता है कि मोमिन का दिल बड़ा होता है, कोई नेकी खुद कर ले तो भी खुश होता है और अगर उसके हिस्से की नेकी कोई और करने लगे तो उसको नेकी करता देकर उतना ही अजर पा लेता है, हदीस से ये बात मिलती है। अब मूसा अलैहिस्सलाम पर कुछ इल्जामात और कुछ उनकी ज़िंदगी की तलख हकीकतें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने इस काम को उस वक्त किया था जबकि मैं राह भूले हुए लोगों में से था। ये लिख लें, फिरौन ने ताने देकर अपने छिछोरपन और अपने कमज़ोर होने की दलील दी और मूसा अलैहिस्सलाम ने माजी के किसी गुनाह या कत्ले खता को एक्सेप्ट करके आपको मुझे सबक दिया कि अगर कहीं गलती अपनी नजर आए तो मान लीजिए। गलती गलत नहीं, गलती पे जमना, उसको लीगलाइज करना, उसको जस्टिफाई करना, ये असल में सबसे बड़ी जहालत है। फिर इसके बाद आगे देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम का कॉन्फिडेंस है, तारीफ और तनकीद से बेनियाज होकर, पीपल कॉन्शियस हुए बगैर, अल्लाह कॉन्शियस होते हुए फिरौन के सामने बोल रहे हैं। अभी आप सुनेंगे अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया। जनाबे बारी ताला ने फरमाया कि हरगिज ऐसा न होगा, तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम खुद सुनने वाले तुम्हारे साथ हैं। तुम दोनों फिरौन के पास जाकर कहो कि बिला शुबा हम रब्बुल आलमीन के भेजे हुए हैं कि तू हमारे साथ बनी इसराइल को रवाना कर दे। फिरौन ने कहा, क्या हमने तुझे अब तेरे बचपन के जमाने में पाला नहीं था? लिख लीजिए, किसी के ऊपर एहसान करके जितलाना ये फिरौनियत है, ये फिरौन की सुन्नत है, प्यारे नबी की ऐसी कोई सुन्नत नहीं। आपने कभी हजरत अली को या जैद को ये नहीं कहा कि आपको तो मैंने पाला था। तो खूबियां ढूंढते जाइए नबी के किरदार में से और खराबियां निकालते जाइए फिरौन के आमाल को देखकर। और तूने अपनी उम्र के बहुत से साल हम में नहीं गुजारे, फिर तो अपना वो काम कर गया जो कर गया, तू ना शुक्रों में, इल्ज़ाम लगा के मूसा को निकाल रहा है अपनी जगह से, ये भी एक बुरा नुक्ता है इसमें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने इस वक्त उस वक्त किया जबकि मैं राह भूले हुए लोगों में से था, फिर तुमसे खौफ खाकर मैं तुम में से भाग गया, फिर मुझे मेरे रब ने हुक्म और इल्म अता फरमाया और मुझे पैगम्बरों में से कर दिया। देखिए, बड़े से बड़ा गुनाह भी हो गया, अल्लाह फिर नबुवत दे रहा है, हालांकि कत्ले खता था, तो पीछे इबादुर रहमान की भी खूबी थी तौबा। यहाँ अगर आप में से किसी से पिछली जिंदगी में कोई बड़ा गुनाह भी हो गया है, कबीरा गुनाह भी हो गया है, डोंट वरी, किसी को ना बताएं, अल्लाह से कहें कि अल्लाह दुनिया में जैसे तूने मुझे अभी तक गुनाहों को मेरे छुपाया हुआ, आगे भी छुपा और मुझसे अपने दीन का काम ले ताकि मैं अपने उस गुनाह का कफ्फारा अदा कर सकूं। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इसी तरह की बात बताई गई और वो क्या थी कि तुम इस सारी चीजों को देखो और फिर अपने लिए सबक ले लो। मुझ पर तेरा क्या यही एहसान है जिसे तू जतला रहा है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था? काला फिरौन व मा रब्बुल आलमीन, फिरौन ने कहा रब्बुल आलमीन क्या चीज है? जब अंदर तकब्बुर भरा होता है ना दिमाग में, तो अपने सिवा किसी की बड़ाई नजर नहीं आती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो आसमान और ज़मीन और इनके दरमियान की तमाम चीज़ों का रब है, अगर तुम यकीन रखने वाले हो। फिरौन ने अपने इर्द गिर्द वालों से कहा, क्या तुम सुन नहीं रहे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादाओं का परवरदिगार है। फिरौन ने कहा, लोगो, तुम्हारा ये आज रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है वो क्या है? वो तो यकीनन दीवाना है, यानी आपको दीवाना कहा गया। ला मजनून, तो इतने इल्ज़ाम सुनने के लिए तैयार रहिए अगर आपको रिसालत वाले काम करने हैं। काला रब्बुल मशरिकी वल मगरिब, मूसा अलैहिस्सलाम बहस में नहीं पड़े बल्कि दलाइल देने लगे। हज़रत मूसा ने फरमाया, मशरिक और मगरिब का और इनके दरमियान की तमाम चीज़ों का रब है, अगर तुम अक़ल रखते हो। फिरौन कहने लगा, सुन ले, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुझे कैदियों में डाल दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगरचे मैं तेरे पास कोई खुली चीज़ ले आऊँ। फिरौन ने कहा, अगर तू सच्चों में से है तो इसे पेश कर। बस उन्होंने अपनी लाठी डाल ली तो वो इसी वक्त सरी खस्तहा बन गई, और अपना हाथ खींच निकाला तो वो भी इसी वक्त देखने वालों को सफ़ेद चमकीला नजर आने लगा। फिरौन अपने आसपास के सरदारों से कहने लगा, भाई ये तो कोई बड़ा दाना जादूगर है, ये तो चाहता है कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से ही निकाल दे। बताओ अब तुम क्या हुक्म देते हो? इन सब ने कहा कि आप इसे और इसके भाई को मोहलत दीजिए और तमाम शहरों में हरकारे भेज दीजिए जो आपके पास ज़ेलम जादूगरों को ले आए। फिर एक मुकर्रर दिन के बाद एक बार तमाम जादूगर जमा किए गए और आम लोगों से भी यही कह दिया कि तुम भी मजमे में हाजिर हो जाओ, अगर जादूगर गालिब आए तो हम इनकी पैरवी करें, यानी जो जीत जाएगा लोग उसके साथ होंगे। अमूमन लोगों का यही रवैया होता है। जादूगर आकर फिरौन से कहने लगे, अगर हम जीत गए तो हमें कुछ इनाम भी मिलेगा। देखिए किरदार क्या है, और अभी थोड़ी देर बाद तब्दीली क्या आने वाली है। फिरौन ने कहा, हाँ, बल्कि ऐसी सूरत में तुम मेरे खास दरबारी बन जाओगे। करीबी लालच दे के बंदों को खरीद रहा। आइए ज़रा इन शुरू की आयात पे तदब्बुर करते हैं, अमल के नुक्ते लेते हुए। अल्लाह तआला से एक दुआ मांगिए जो प्यारे नबी ने सिखाई, आपके मेरे किरदार को ऊंचा करने के लिए बहुत फ़ायदा मंद होगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका खश्यतक फिल गैबी वश्शहादा वस्सलुका कलीमत अल्हक्की फिर रिदा वल गदब। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी खशियत का सवाल करता हूँ, गैब में भी यानी अकेले में भी, और शहादा हाजिर यानी दूसरों के बीच में भी, और असलु का कलीमत अल हक की, मैं हक की बात करूं फिर रिदा वल गजब, चाहे मैं गुस्से में हूं चाहे मैं खुश हूं। कितनी प्यारी दुआ है, हम खुद तो ऐसी प्यारी दुआएं मांग भी नहीं सकते जो अल्लाह के नबी ने सिखाई हैं। तो शऊर से कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन। अगली बात, वाज और नसीहत और इल्मी महाफिल में शिरकत फरमाइए। अपने साथियों या पड़ोसियों में अगर कोई बुराई देखें तो दूसरों को बताने की बजाय, तशखीर करने की बजाय, उससे पहले खुद दोस्ती करें, उसका एतमाद लें, और फिर अच्छे तरीके से मुअद्दब अंदाज से उसकी उस बुराई को उसके सामने ऐसे पेश करें कि उसको आपका ये कहना बुरा नहीं बल्कि अच्छा लगे। और अपने ऊपर भी लीजिए, अगर आपकी कोई बुराई आपको बताए तो उसका शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि बस बातें दोस्त नहीं दुश्मन सिखा जाते हैं, मुआविन नहीं मुखालिफ आपको बहुत सारी बातें सिखा जाते हैं। कुरान से रहनुमाई, अपनी और दूसरों की हिदायत की फिक्र और दुआ करनी है। फितरी डर अल्लाह से डरने के मुनाफी नहीं है, यानी अगर हजरत मूसा को डर आ रहा था तो ये उनके बशर होने की दलील है। गलत रस्मों पर जिद और हठधर्मी की वजह से कायम नहीं रहना, यानी गलत चीज़ों को गलत कहिए, गलत समझिए और फिर उससे दूर रहिए। गौर व फिक्र, अगर किसी काम में आपको खुद पर एतमाद ना हो और कमी कोताही का डर हो तो दूसरों से मदद ली जा सकती है, ये मूसा अलैहिस्सलाम से सीखा। हिकमत इसमें है कि मुनासिब जगह पर मुनासिब बात की जाए, जैसे खाने में नमक मिर्च मुनासिब हो तभी टेस्ट बनता है। जालिम के पास दलील ख़त्म हो जाए तो अपनी ताकत के इस्तेमाल पर आ जाता है, जैसे कि फिरौन ने किया। और ऐसे लोग जो धमकियां देते हैं या बस शौहर अपनी बीवियों पे हाथ उठाते या बात बात पे तलाक की बातें करते, असल में एहसास कमतरी का शिकार होते हैं और कमज़ोर पर्सनैलिटी होती है उनकी। आगे 43 से मूसा का किस्सा ऑनवर्ड। काल लहु मूसा अल्कू मा अंतुम मुल्कून, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों से फरमाया, जो कुछ तुम्हें डालना है डाल दो। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाल दी और कहने लगे, अब ये जुमला देखिए कितना कुफ्रिया जुमला है, लेकिन उनकी जुबान से क्या निकला, बिज्जती फिरौन, इज्जत फिरौन की कसम। आप कहते हैं कि किसी की कसम नहीं खा सकते, लेकिन उन्होंने इज्जत फिरौन की कसम खाई, हम यकीनन गालिब ही रहेंगे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी लाठी मैदान में डाल दी, जिसने इसी वक्त इनके झूठ मूठ करतब को निगलना शुरू कर दिया। ये देखते ही जादूगर बेख्तियार सजदे में गिर गए और उन्होंने साफ कह दिया कि हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, यानी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून के रब पर। फिरौन ने कहा कि मेरी इजाज़त से पहले तुम इस पर ईमान ले आए, यकीनन यही तुम्हारा वो बड़ा सरदार है जिसने तुम सबको जादू सिखाया, सो तुम्हें अभी अभी मालूम हो जाएगा। कसम है अभी मैं तुम्हारे हाथ पाँव उल्टे तौर पर काट दूंगा और तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। उन्होंने कहा, ला दईर, कोई हर्ज नहीं, हम तो अपने रब की तरफ लौटने वाले ही हैं। क्या अपसेट डाउन हुई, यू टर्न लिया उन्होंने। ईमान बंदे के अंदर ऐसे ही तब्दीली डाल देता है। फिर किसी की धमकियों का कोई डर का खौफ नहीं रहता, किसी की बातों का। और फिरौन तो सूली पे चढ़ाने की बातें कर रहा था, उससे भी वो नहीं डरे। इस बिना पर कि हम सबसे पहले ईमान वाले बने, हमें उम्मीद पड़ती है कि हमारा रब हमारी सारी खताओं को माफ फरमा देगा और अल्लाह पर नजरें लग जाती हैं सच्चे ईमान के बाद। वाहन, और हमने मूसा अलैहि सलाम को वही की कि रातों रात मेरे बंदों को निकाल ले चल, तुम सब पीछा किए जाओगे। फिरौन ने शहरों में हरकारों को भेज दिया कि यकीनन ये गिरोह बहुत ही कम तादाद में है और इस पर ये हमें सख्त गजबनाक कर रहे हैं, और यकीनन हम बड़ी जमात हैं इनसे चुकन्ना रहने वाले। बिलाहर हमने इन्हें बागात से और चश्मों से और खजानों से और अच्छे अच्छे मकामात से निकाल बाहर किया। इस तरह हुआ और हमने इन तमाम चीजों का वारिस बनी इसराइल को बना दिया। बस फिरौनी सूरज निकलते ही इनके ताकुब में निकले। बस जब दोनों ने एक दूसरे को देख लिया तो मूसा के साथियों ने कहा, हम यकीनन पकड़ लिए गए। मूसा ने कहा, हरगिज़ नहीं, यकीन मानो मेरा रब मेरे साथ है जो जरूर मुझे राह दिखाएगा। हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि दरिया पर अपनी लाठी मारो। बस इसी वक्त दरिया फट गया और हर एक हिस्सा पानी का मिसल बड़े पहाड़ के हो गया, और हमने इसी जगह दूसरों को नजदीक ला खड़ा किया। हैरत हुई आपको, अल्लाह ने मूसा के असा के जरिए पानी में रास्ता बना दिया, एक इधर पहाड़ की तरह जम गया, एक इधर जम गया। कोई हैरत की बात नहीं, क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इससे भी बड़ा मुआवजा दिया, और वो क्या, वलो अनजलना हाजल कुरान अला जबलिल रायतहु खाशिया मुतसद्दिया मिन खशयतिल्लाह। मूसा का मुआवजा वक्ती था, नबी सल्लम का मुआवजा फॉरएवर है। मूसा का मौजा सिर्फ उनके हाथ में आता था तो मौजा बनता था, वो असा, कोई दूसरा उस असा को पकड़े तो कुछ नहीं होगा। नबी सल्लम को अल्लाह ने जो मौजा दिया, वजह है तुम भी जिहादन कबीरा, आज जिसके हाथ में कुरान आ जाता ना, वो अल्लाह की रहमतों में आ जाता। और इसी के साथ फिर दुनिया में तब्दीली आती है, तो आज कारे रसालत की कंटिन्यूएशन कुरान के साथ होगी। अल्लाह हमें इस मौजे की कदर की तौफीक अता फरमा दे। और क्या हुआ, वन जई ना मूसा व मम्मा हुआ जमाहीन, और मूसा अलैहि सलाम और इन पर ईमान लाने वालों को हमने निजात दी, फिर और सब दूसरों को डबो दिया। यकीनन इसमें बड़ी इबरत है और इनमें से अक्सर लोग ईमान वाले नहीं, और बेशक आपका रब बड़ा ही गालिब और मेहरबान है। क्या सीखा मूसा अलैहि सलाम के वाक्य से? कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट मुस्लिम। जिसके हाथ में कुरान है उसको बिल्कुल कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं। आप बिल्कुल सोसाइटी में छोटे नहीं है, नीचे नहीं है, आप थर्ड क्लास नहीं है, नऊज़ुबिल्ला आप कोई लोअर क्लास नहीं है। कुरान वाले इलीट होते हैं, और उनके हाल गुली, उनके रवैयों से, उनके किरदार से, उनके अल्लाह पे नजरें लगाने से ये दिखना चाहिए। इफ यू आर सॉरी टू बी मुस्लिम, ढीले ढाले मुस्लिम और बड़े ही इनोइंग से और बड़े ही कच्चे पक्के मुसलमान, इनसे कोई मुतासिर नहीं होगा। पूरा दुनिया को दिखाइए कि वी आर हैप्पी मुस्लिम, हमारे पास अल्लाह की हर नेमत है, हम मांगते नहीं है, हमारा अपना निज़ाम है, हमारा अपना इस्लाम है, हम तुम्हारे कपड़े नहीं पहनते, हमारे अपने बड़े प्यारे कपड़े हैं, हम तुम्हारी रस्में नहीं निभाते, हमारी अपनी रस्में बहुत प्यारी हैं। आगे दूसरा किस्सा हजरत इब्राहिम का, वतलू अलैहिम नबा इब्राहिम। इन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया भी सुना दीजिए, जबकि उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया, तुम किसकी इबादत करते हो? उन्होंने जवाब दिया कि इबादत करते हैं बुतों की, देखिए कितना फखर है उनको, हम तो बराबर इनके मुजावर बने बैठे हैं। आपने फरमाया जब तुम इन्हें पुकारते हो तो क्या वो सुनते भी हैं। ये है इंटेलेक्चुअल जिहाद। इब्राहिम से सीखिए, पढ़े लिखे, अपने आप को बहुत बड़ा समझने वाले वेस्टर्नाइज लोगों से कैसे बात करनी है, उनसे मरूब नहीं होना, उनको मरूब कीजिए, उनसे मुतासिर नहीं होना, खुद मुतासिर कुन तरीके से उनके सामने जाइए ताकि वो आपकी बात सुन सके। कहा अच्छा बताओ ये सुनते हैं, या तुम्हें नफा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये हम कुछ नहीं जानते, यानी बावले हो गए, भीगी बिल्लियां बन गए। करे अच्छा देखते हैं क्या होता है, अच्छा हमें तो नहीं पता, वैसे हमें आपकी बात नहीं समझ आई। ऐसे मुसलमान चाहिए कुफर की और शिर्क की और बेदीनी की आंखों में आंखें डालकर देखने वाले। और क्या कहा, हमने तो अपने बाप दादाओं को इसी तरह करते देखा, ये धान के बाद सोच के नहीं काम करता मुशरिक, अच्छी चीज को करता है तो बुरी को भी करने लग जाता है, यानी अपने बाप दादा को करते देखकर वही काम करने लगता है। आपने फरमाया कुछ खबर भी है जिन्हें तुम पूछ रहे हो, तुम और तुम्हारे अगले बाप दादा, ये सब मेरे दुश्मन है, ये है यकीन। ये कॉन्फिडेंस चाहिए आज की यूथ के लिए। बट जो सच्चे अल्लाह के जो तमाम जहानों का पालनहार है, जिसने मुझे पैदा किया और वही मेरी राहबरी फरमाता है, वही मुझे खिलाता पिलाता है, और जब मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे शिफा अता फरमाता है। हाईलाइट कीजिए अंबिया कराम का मुआद्दिब अंदाज, अदब विद अल्लाह। बीमारी की निस्बत क्या की, मैं बीमार होता हूँ, शिफा की तू देता है। हम क्या कहते हैं, अल्लाह तूने बीमार कर दिया, अल्लाह तूने मेरे नसीब में बीमारियां ही लिखी है, तो ये बेअदबी की बात है। ऐसे जुमले अपने निकाल दीजिए। और वही मुझे मार डालेगा फिर जिंदा कर देगा, और जिससे उम्मीद बंधी हुई है कि वो रोजे जजा में मेरे गुनाहों को बख्श देगा। रब्बी हबली हुक्मा वल हिकनी बिसालिहीन वजअलनी लिसान सिदकिन फिल आखिरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नति नईम। आमीन तो बोल दीजिए। ऐ मेरे रब मुझे कुव्वत फैसला अता फरमा और मुझे नेक लोगों में मिला दे, और मेरा जिक्र खैर पिछले लोगों में भी बाकी रख, मुझे नेमतों वाली जन्नत के वारिसों से बना दे। वग़फिर ली अभी इन्नहु काना मिनद्दालीन, और मेरे बाप को बख्श दे, यकीनन वो गुमराहों में से था। और जिस दिन के लोग दोबारा उठाए कर जाएंगे मुझे रुसवा न कर, जिस दिन के माल और औलाद कुछ काम ना आएगी, लेकिन फायदे वाला वही होगा जो अल्लाह तआला के सामने बेऐब दिल लेकर जाए। सोचिए जरा, आपको मुझे कलबे सलीम लेकर जाना अल्लाह के सामने, ये दुनिया की ख्वाहिशों में टूटा हुआ दिल। तो रिसालत एक मिशन है, इसमें बंदा हर लम्हे अपने दिल की हिफाजत करे कि ये मैंने अल्लाह को पेश करना है। तदब्बुर और अमल, आयत 43 से अमल के नुक्ते। अल्लाह तला से ईमान पर साबित कदमी और बख्शिश की दुआ मांगिए, दिल की निगरानी और इसलाह की कोशिश करे, क्योंकि कामयाब वही होगा जो पाकीज़ा दिल लेकर अल्लाह के पास हाजिर होगा। सुबह शाम ये दुआ पढ़िए और मांगिए और सोचिए और गौर कीजिए। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। आप कहते हैं कि गैर महसूस तरीके से दौरे कुरान में आपको सुबह शाम की दुआएं याद करवाई जा रही हैं। एक एक करके कर लें तो आप इंशाल्लाह वैसे ही महफूज रहेंगे बहुत सारे फितनों से। कुरान से रहनुमाई, बंदे अल्लाह की नाफरमानी करें तो अल्लाह की नज़रों में बहुत हकीर हो जाते हैं। यकीन रखें कि अगर आपको कोई बीमारी लाहिक है तो इसे अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं कर सकता। अबाउ अजदाद की अंधी तकलीद से बचें, हक और दलील के रास्ते की पैरवी कीजिए। गौर व फिक्र की बातें, हक सबको दिखता है, मानते वो हैं जिनके दिल में तासुब ना हो। ईमान की मिठास चखने के बाद जादूगर फिरौन की धमकी से मुतासिर ना हुए। अल्लाह के साथ होने का यकीन मोमिन को फितनों के वक्त साबित कदम रखता है। दिल का जिक्र खसूसी तौर पर आया क्योंकि इसके सही रहने से बाकी तमाम आज़ा भी सही रहते हैं। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। आयत नंबर 90 से, व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, और परहेजगारों के लिए जन्नत बिल्कुल नज़दीक ला दी जाएगी। अल्लाह हमें परहेजगार बना दे। اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے رہے وہ کہاں ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے سوا تھے، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ بس وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی وہاں۔ کبھی اوندے منہ سونا نہیں چاہیے، ایسا لیٹنا جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ یہ آیت آپ کے سامنے ہے اور اس پہ حدیث بھی موجود ہے۔ قالوا وهم فيها يختصمون، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے کہ قسم اللہ کی، یقیناً ہم تو کھلی غلطی پر تھے جب کہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے، اور ہمیں تو سوائے ان بدکاروں کے کسی اور نے گمراہ نہیں کیا تھا۔ اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں اور نہ کوئی غم خوار دوست، اگر کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر جانا ملتا تو ہم پکے سچے مومن بن جاتے۔ یہ ماجرا یقیناً آپ کے لیے ایک زبردست نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ یقیناً آپ کا پروردگار ہی غالب مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق دے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔ یا نوٹ کیجئے، مرسلین کہہ کے آیتیں آ رہی ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جس نے ایک نبی کا انکار کیا اس نے سارے نبیوں کا انکار کیا۔ اسی پہ پھر اگلی بات لی جاتی ہے کہ جس نے دین کے کسی ایک حکم کا انکار کیا اس نے ساروں کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ اس قال لہم اخوہم نوح الا تتقون، قوم نوح نے بھی نبیوں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ سنو، میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے۔ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو صرف رب العالمین کے ہاں ہے، بس تم اللہ کا خوف رکھو اور میری فرما برداری کرو۔ قوم نے جواب دیا، کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں؟ تیری تاربیداری تو رذیل لوگوں نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے رہے؟ یعنی لوگوں کی ڈھکی چھپی کو مت کھولو، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے اگر تمہیں شعور ہو۔ میں ایمانداروں کو دھکے دینے والا بھی نہیں، میں تو صاف طور پر ڈرانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، نو اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے سنگسار کر دیا جائے گا۔ یہ ہے رسالت، ایک مشن ہے۔ حضرت نو کو دھمکیاں مل رہی ہیں کہ آپ کو پتھر مار مار کے مار دیں گے، کیا میں اور آپ پتھروں پر چل کے بھی رب کے کام کر سکتے ہیں؟ تو یہیں سے پلٹ جائیں جن کو جان ہو پیاری۔ رسالت کا کام ہمیشہ مشکل ہے، اور یہ خاص طور سورت شعرا میں اب جو انبیاء کرام کے قصے ہیں نا، یہ اگزیکٹلی یہی بتا رہے ہیں کہ اس رستے کی ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے اللہ کے کام کرتے جاؤ گے، پھر ہی اللہ کے ہاں سرخرو ہو گے۔ آپ نے کہا، میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ آیت 117 پہ نے صبح بولیے، الحمدللہ علی نعمت القرآن فافتح بینی وبینہم فتحا، بس تو مجھ میں اور ان میں قطعی فیصلہ کر دے۔ یہ تھی وہ دعا جس کی وجہ سے عذاب آیا ان پہ، یعنی بد دعا کہہ لیجیے۔ اور مجھے اور میرے با ایمان ساتھیوں کو نجات دے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری بھی کشتی میں سوار کرا کے نجات دی، بعد ازاں باقی تمام لوگوں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے تھے بھی نہیں، اور بے شک آپ کا پروردگار البتہ وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔ کیا پتہ چلا، ہر نبی آزمایا گیا، ہر نبی ستایا گیا، اور ہر نبی کو اللہ کی مدد بھی ملی۔